कुछ देर बाद कायरव वापस रूम में आया। इनाया सर झुकाए बैठी जाने क्या सोच रही थी। कायरव ने गौर से उसे देखा और उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? कायरव ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखते हुए सवाल किया। इनाया ने धीरे से सर उठाया और होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए सर हिला दिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो ठहरी और पेट पर हाथ रखते हुए बोली। मुझे जोरों की भूख लगी है, खाना कब आएगा?
तुम फिर से मुझसे कुछ छुपा रही हो और मैं और सवाल ना करूं इसलिए मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हो।
कायरव ने गहरी सांस छोड़ी और प्यार से उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाते हुए बोला, थोड़ी देर वेट करो, खाना बन रहा है। इनाया ने झट से सर हिला दिया। इनाया के हाथ में पकड़ा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अब उसी नंबर से नॉर्मल मैसेज था, जिसे देखकर इनाया घबरा गई। क्या हुआ, किसका मैसेज है?
किसी का भी नहीं,
इनाया की जुबान लड़खड़ाई, हड़बड़ाते हुए उसने कायरव को देखा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? देखो चेहरा पूरा पसीने से भीगा है। कायरव ने उसके चेहरे को छूना चाहा, पर इनाया ने झट से अपना सर पीछे कर लिया, अपनी हथेली से अपने चेहरे को पोंछ लिया। घबरानी रही, वो बस गर्मी लग रही है। तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो? नहीं, झूठ नहीं बोल रही, इनाया ने हड़बड़ाते हुए सर हिलाया। कायरव की त्योरियां चढ़ गईं और शक भरी नजरें इनाया के चेहरे पर ठहर गईं। अगर झूठ नहीं बोल रही तो बताओ कि अचानक से तुम्हें इतनी गर्मी कैसे लग गई? किसका मैसेज आया था जिसे देखकर तुम इतनी घबरा गई?
कंपनी का मैसेज था।
कायरव कुछ पल गहरी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ को थामते हुए बोला, इनाया तुम जानती हो ना, तुम अपने दिल की हर बात, हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो। इनाया ने धीरे से सर हिला दिया। तो बताओ क्या हुआ है, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? इनाया के होठ फड़फड़ाए, चेहरे पर घबराहट के भाव उभरे। वो कहने ही वाली थी कि अचानक कायरव का फोन बजा। स्क्रीन पर दिखते नंबर को देखकर कायरव की आंखें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। वो तेज कदमों से चलते हुए सीधे रूम से बाहर निकल गया। इनाया और उसकी बात अधूरी ही रह गई। मानव की आंखों में नाराजगी उभरी। उसने अफसोस से सर हिलाया, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मेरे लगन और बच्चों के बारे में बाद में सोचना, अभी मेरी बात सुनो। अनीता जी के चेहरे पर मायूसी छा गई। इतनी कोशिश की और सब बेकार। मानव ने उनका ध्यान असल मुद्दे की तरफ खींचने की कोशिश की। ये लड़की, नित्या नाम है इसका, घर आ रहा था जब रास्ते में मिली, कुछ गुंडे छेड़ रहे थे इसे, उन्हीं से बचाने में मुझे और इसे थोड़ी बहुत चोट लग गई। उन गुंडों से तो बचा लिया, लेकिन परेशानी ये थी कि इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और इतनी रात को इसे सड़क पर अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे इसे अपने साथ लाना पड़ा। यहाँ रात गुजार लेगी, सुरक्षित रहेगी, सुबह देखूंगा कि आगे क्या करना है। मानव ने शॉर्ट में पूरी कहानी उन्हें सुना दी। मजबूरी शब्द सुनकर नित्या के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी। अनीता जी के चेहरे पर फिक्र और चिंता झलकने लगी। वो तुरंत ही उठकर नित्या के पास आ गई। तुम ठीक हो? उन गुंडों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? नित्या का ध्यान मानव से हटकर अनीता जी पर गया। मैं ठीक हूँ आंटी, वो गुंडे कुछ करते उससे पहले ही मैं भाग गई और फिर ये मिल गया, इसने सब गुंडों की पिटाई की और मुझे उनसे बचाकर यहाँ ले आया। नित्या बेफिक्री से मुस्कुराई। अनीता जी की चिंता कुछ कम हुई, उन्होंने नित्या को अपने सीने से लगा लिया। नित्या चौंक गई और आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगी। वहीं मानव मुस्कुरा उठा। जानता था, ऐसी ही थी उसकी आई, इतनी अच्छी कि दूसरों के लिए भी परेशान हो जाती थी, सबको अपना ही समझती थी। अच्छा हुआ जो तू इसे अपने साथ घर ले आया, अकेली लड़की का अकेले रात में बाहर रहना सही नहीं है, अब यहाँ आराम से रह लेगी। बेटी, तुम कहीं और की रहने वाली हो?
नहीं, मैं तो यहीं की हूँ, नित्या ने झट से जवाब दिया। अनीता जी अब कुछ उलझन में पड़ गई।
यहीं की हो तो अपने घर क्यों नहीं गई? तुम्हारा परिवार चिंता कर रहा होगा।
मेरा कोई घर नहीं, नित्या ने सर झुकाते हुए धीरे से जवाब दिया। अनीता जी चौंक गईं।
अनाथ हो? आई अनाथ नहीं है, बस इसके आई बाबा अलग हो गए हैं, ये अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन पैसे के लिए वो जबरदस्ती इसकी शादी इससे बड़े आदमी से करवाने लगे तो ये घर से भाग गई, इसलिए घर वापस नहीं जा सकती थी, तो मैं इसे यहाँ ले आया, जवाब मानव ने दिया और नित्या ने चैन की सांस ली। अनीता जी फिर दुखी हो गई। कैसे निर्दयी माँ बाप हैं, इतनी प्यारी बच्ची को बेसहारा छोड़ दिया। अनीता जी ने प्यार से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, तुम इसे अपना ही घर समझो, जब तक दिल चाहे आराम से यहाँ रहो, तुम साथ रहोगी तो मुझे भी अकेलापन नहीं सताएगा। आई, मानव ने हैरानगी से कुछ कहना चाहा, पर अनीता जी ने आंखें दिखाते हुए उसे चुप करवा दिया। ठीक है, आपका घर है, जो करना है कीजिए, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। मानव ने नाराजगी से उन्हें देखा और अपना बैग उठाते हुए वहां से चला गया। नित्या उसके यूं जाने से उदास हो गई। बेटा, तुम उसकी बात को दिल पर मत लगाना, उसका बस चले तो मुझे भी इस घर से बाहर निकाल दे और फिर अकेला रहे, तुम तो बस मेरी बात सुनो, इस घर को अपना ही घर समझो और जब तक दिल चाहता है आराम से रहो, मन्नू भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बस शक्ल से ही थोड़ा खड़ूस दिखता है, दिल का बहुत अच्छा है। अनीता जी का प्यार और अपनापन महसूस करते हुए नित्या अपनी उदासी भुलाकर मुस्कुराई और सर हिलाने के बाद असमंजस भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। मन्नू, ये कैसा नाम हुआ?
अरे मानव नाम है उसका, मैं प्यार से मन्नू बुलाती हूँ।
ओ, मानव नाम है उसका, नित्या ने मन ही मन में कहा और उस तरफ देखने लगी जहां अभी अभी मानव गया था। वो कपड़े बदलने गया होगा। तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। मैं तो साड़ी पहनती हूँ। एक काम करो, तुम जाकर मानव से कहो कि अपने कपड़ों में से कुछ अभी के लिए तुम्हें पहनने के लिए दे दे और कल ऑफिस से जल्दी आकर तुम्हें बाजार ले जाकर कुछ कपड़े दिला लाए। नित्या तो जैसे यही चाहती थी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और सर हिलाते हुए उस दिशा में बढ़ गई। दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लगेगी। इतनी सुंदर बहू तो इस पूरे चौल में किसी की नहीं है। अनीता जी की आंखों में अलग ही सपने सजने लगे। मन ही उन्होंने साथ में उन्हें इमेजिन करके उनकी नजर भी उतार ली। नित्या दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही हाथ लगाया दरवाजा खुद बखुद खुल गया। नजर सीधे सामने गई और उसकी आंखें सितारों से चमकने लगी। वो बेझिझक अंदर आने लगी। आवाज सुनकर मानव, जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, वो झटके से पलटा। जैसे ही नजर नित्या पर गई वो पूरी तरह घबरा गया। असल में उसने अपनी शर्ट खोल दी थी, वेस्ट भी खोल दी थी। इरादा नहाने जाने का था, पर फिलहाल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा खुद को देख रहा था और ऐसी हालत में अचानक नित्या को सामने देखकर उसके होश उड़ गए थे। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। मानव ने हड़बड़ाते हुए बेड पर पड़ी शर्ट उठाई और पहनते हुए सवाल किया, तुम कब आई और यहाँ क्या कर रही हो तुम? अभी तो आई, आंटी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े गंदे हैं और वो साड़ी पहनती है जो मैं नहीं पहन सकती, इसलिए तुमसे अभी के लिए कपड़े मांग लो। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तुम्हारे कपड़े पहन लो, कल तुम ऑफिस से जल्दी आकर मुझे कपड़े दिलाने लेकर जाओगे। मानव की आंखें हैरानी से फैल गईं। आई ने ऐसा कहा? हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर उनसे पूछ लो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची, गॉड प्रॉमिस।
नित्या ने तुरंत ही अंगूठे और तर्जनी उंगली से गले से पास हल्के से पकड़ लिया। उसकी क्यूट सी शक्ल और ये मासूम सी हरकत, मानव की निगाहें पल भर को उस पर ठहर गई। फिर उसने निगाहें फेरते हुए कहा, ओके, जाओ कबर्ड से अपने लिए कुछ निकाल लो, लेकिन बस ऊपर के पोर्शन में ही देखना, नीचे वाले पोर्शन को हाथ भी मत लगाना। हल्की सख्ती से मानव ने वार्निंग दी। नित्या ने नाक से कोड़ते हुए मुंह बना लिया। मैं नहीं छूती तुम्हारा कबर्ड, तुम खुद निकाल कर दो। मानव ने पल भर सोचा, फिर सर हिला दिया। अब उसने शर्ट पूरी पहन ली थी। वो खुद ही कबर्ड खोलकर खड़ा हो गया, फिर कभी नित्या को देखता तो कभी अपने कपड़ों को। तुम्हारे साइज का मेरा पास कुछ भी नहीं है। मैं लूज भी पहन लूंगी, नित्या तपाक से बोली। थोड़ी देर सोचने के बाद मानव ने एक टी शर्ट और ट्राउजर निकालकर उसके तरफ बढ़ा दिया। नित्या ने जल्दी से आकर उसे ले लिया। चेंज कहाँ करूँ? बाहर बाथरूम में, वही जाकर चेंज कर लो और हाथ मुंह भी धो लेना। रूम में बाथरूम नहीं है? मानव ने अजीब नजरों से उसे देखा। नित्या ने बत्ती सी चमकाई और तुरंत बाहर भाग गई। मुझे इस लड़की में कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है? देखने में, बातों और बिहेवियर से हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं लगती। डिनर के बाद बात करता हूँ इससे। टू बी कंटिन्यूड।